नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा तथा नुकसान के आकलन के लिए आज जम्मू के दौरे पर। गृह मंत्रालय ने आपदाग्रस्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में क्षति के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी। देश में सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान। व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 51.50 रुपये कम की गई। और भारत राजगीर में एशिया कप हॉकी में जापान को 3-2 से हराकर सुपर फोर चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान श्री मोदी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कल चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रूस के कजान शहर में पिछली बैठक के बाद से भारत चीन संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं।
डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के बीच जुड़े हुए।
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने पर जोर दिया। श्री मिश्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति के समक्ष ये स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर शांति दोनों देशों के संबंधों के लिए आवश्यक है।
The two leaders also exchanged views on ways to increase and balance bilateral trade, strengthen people-to-people ties, cooperate on trans-border rivers. There was a desire to make additional progress on all of these issues on the basis of mutual respect, mutual interests and mutual sensitivity.
विदेश सचिव ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों ने संबंध नए सिरे से मजबूत करने के उपाय शुरू किए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद की चुनौती का भी उल्लेख किया और इससे निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
Cross-border terrorism was mentioned by Prime Minister as a priority. He did underline the fact this is something that impacts both India and China and that it's important therefore that we extend understanding and extend support to each other as both of us combat cross-border terrorism.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मैसूरू में अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान के हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी। वे कल चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति तिरुवरूर स्थित तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इस तिमाही में 7.8% की शानदार जीडीपी वृद्धि ने साबित कर दिया है कि अर्थव्यवस्था का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री रिजिजू ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और स्वदेशी को अपनाना जरूरी है।
भारत में बनी हुई चीज़ें को इस्तेमाल करना चाहिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये तो प्रधानमंत्री जी पिछले 11 सालों से बार बार लोगों को अपील कर रहे हैं और हम लोग भी हर जगह यही बोल रहे हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री जम्मू में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे।
गृह मंत्री जम्मू में बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और राजभवन में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें अब तक किए गए बचाव, राहत और पुनर्वास संबंधी कामों की जानकारी देंगे। श्री शाह प्रभावित हुए परिवारों से भी मिलेंगे। बैठक के बाद गृह मंत्री श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा सहित बाढ़ से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा, बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा, बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर ये दल मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करेंगे और राज्य सरकारों के राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने 24 राज्यों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन कोष में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष से 12 राज्यों को करीब 2,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और प्रतिकूल मौसम से लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। एक रिपोर्ट।
प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है और मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश के 10 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
उधर महाराष्ट्र में इस सप्ताह अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3 सितंबर को मुंबई और ठाणे जिले को येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पालघर और रायगढ़ को ऑरेंज अलर्ट है, यानी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 4 सितंबर को आईएमडी ने मुंबई, पुणे, रायगढ़, सातारा, सांगली और सोलापुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मराठवाड़ा और नाशिक क्षेत्र को छोड़कर शेष महाराष्ट्र में इस सप्ताह अलर्ट जारी है। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
मौसम विभाग ने सितंबर महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग की मासिक पूर्वानुमान रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में इस महीने सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होगी। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, सुदूर दक्षिणी प्रायद्वीप के कई क्षेत्रों तथा उत्तर भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि सामान्य से अधिक वर्षा से कृषि और जल स्रोतों को लाभ होगा, लेकिन बाढ़ और भूस्खलन का खतरा हो सकता है, यातायात में व्यवधान और स्वास्थ्य चुनौतियों का जोखिम बढ़ सकता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज से 51.50 रुपए कम हो गई है। तेल विपणन कंपनियों ने बताया कि अब दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1,580 रुपए में मिलेगा, हालांकि 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
भारत एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर फोर चरण में पहुंच गया है। बिहार के राजगीर में कल पूले में भारत ने जापान को 3-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। खेल के तीसरे मिनट में मनदीप सिंह ने विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए गोल किया और भारत को बढ़त दिला दी। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 गोल दागे और अपनी टीम की लगातार दूसरी जीत सुनिश्चित कर दी। भारतीय टीम के गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम के कई हमलों को काम कर दिया। जापान के लिए कवाबे ने अंतिम क्षणों में 2 गोल दागकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अंत तक जापान की टीम को नियंत्रण में रखकर मैच जीत लिया। भारत के अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज भारत अपने अंतिम पूल मैच में कजाकिस्तान से खेलेगा। भारत ने 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के नेतृत्व में 19 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। देश के इतिहास में पहली बार भारत के 4 पुरुष जैवलिन थ्रोअर इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के अलावा सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव को शामिल किया गया है। भारतीय टीम में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। उधर ताजिकिस्तान में काफा नेशंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज भारत का सामना ईरान से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में ताजिकिस्तान को 2-1 से और ईरान ने अफगानिस्तान को 3-1 से हराया था। विश्व रैंकिंग में ईरान 20वें और भारत 133वें स्थान पर है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कुपोषण की रोकथाम और सही पोषण के महत्व पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र सिंह बिष्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आहार विशेषज्ञ डॉ. ऋचा जायसवाल परिचर्चा में शामिल होंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की प्रमुख खबर है। ड्रैगन और हाथी ने फिर मिलाया हाथ शीर्षक से हिंदुस्तान ने दोनों नेताओं की मुलाकात को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है भारत चीन दोस्ती सही विकल्प, सीमा विवाद के परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने पर सहमति, दोनों नेताओं के बीच 50 मिनट की बातचीत, चीनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिक्स में आने का न्योता स्वीकारा। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है हमारी मजबूत दोस्ती ही राइट चॉइस। सीएनएन ने लिखा है ट्रंप टैरिफ के बीच एससीओ में पीएम मोदी का रेड कार्पेट वेलकम, बड़ा राजनीतिक संकेत। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार चीन की आर्थिक शक्ति और टेक्नोलॉजी में बढ़त भारतीय इंडस्ट्री के लिए बूस्टर साबित होगी। पंजाब केसरी ने आईटीआर फाइलिंग, यूपीएस, सिल्वर हॉलमार्किंग और पर्सनल फाइनेंस में आज से होने जा रहे अहम बदलावों को प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा ने शीर्ष न्यायालय के निर्णय को प्रमुखता से दिया है वाहन का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थल पर नहीं तो टैक्स भी नहीं। भारत की एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जनसत्ता की प्रमुख खबर है ये संस्था दूर दराज के गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। राजस्थान पत्रिका की मंडे इंस्पिरेशनल स्टोरी ध्यान आकर्षित करती है मंदिर के चढ़ावे से किया पर्यावरण संरक्षण का अनोखा काम, रामायण ने बदल दी जिंदगी, पुष्प वाटिका प्रसंग से प्रेरणा लेकर लगाए 1000 पेड़।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा तथा नुकसान के आकलन के लिए आज जम्मू के दौरे पर। गृह मंत्रालय ने आपदाग्रस्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में क्षति के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी, देश में सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान। व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 51.50 रुपए कम की गई। और भारत राजगीर में एशिया कप हॉकी में जापान को 3-2 से हराकर सुपर फोर चरण में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।